Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Shivananda Lahari in Hindi, presented by Mahamandaleshwar Swami Sri Atmananda Giriji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
और गले में माला पहनने की इच्छा हुई तो सर पर लपेट ली, कान में कुंडल लगाने की इच्छा हुई तो बिच्छू लगा ली, श्रृंगार वो भी करते हैं, तुम भी करते हो, तुम आसक्ति पूर्वक विषयों के आसक्ति पूर्वक श्रृंगार करते हो, वो अनासक्त जो मिल गया उसी से अपना काम। तुम नाइसिल पाउडर वगैरह लगाते हो, राख लपेट लेते हैं, तुम नहाने के बाद पाउडर छिड़कते हो कि नहीं शरीर में, और भगवान शिव नहाने के बाद स्नान के बाद भस्मी चढ़ाया जाता है, उसी से खुश है, तो आसक्ति नहीं है उनकी। आसक्ति न होने के कारण विषय सेवन नहीं करते, और शायद विषय सेवन न करने के कारण ही विष सेवन करने पर भी कोई असर नहीं हुआ। और क्योंकि हम विषय सेवन में आसक्त है इसलिए विष को भी नहीं पचा सकते, विषय के आसक्ति के चलते विष को नहीं पचा सकते, और विषय के आसक्ति नहीं है इसलिए भगवान शिव विष को भी पचा गए, असर नहीं किया। तो वो यहां बता रहे हैं ज्वालोग्रम सकला मराति भयद, वो जो कालकूट था उसकी जो ज्वाला थी उसको देखकर अमरा अति भयदा, देवता भी जो अमृत पान करते हैं नित्य, वे लोग भी डरने लग गए, भयभीत हो गए। उसको कतम्बा त्वया दृष्ट, दूसरे लोग तो सुन भी नहीं सकते हैं उसके बारे में, और आपने तो उसको प्रत्यक्ष देखा, आंखों से देखा, कैसे देखा, क्या साहस है आपकी, किम च करे धृता, और देखा था इतना तो ठीक था, करे धृता हाथ से हाथ में उठा लिया आपने तो, क्या समझती हुई, करतले किम पक्व जम्बू फलम, पका हुआ जामुन के फल मानकर आपने हाथ में उठा ली, उठा लिया तो ठीक ही था, फेंक देते, उठाने के बाद तो आपको पता चल गया ना जम्बू का फल नहीं है तो जहर है, आपको तो ऐसा भ्रांति हुआ कि वास्तव में जम्बू फल ही है, जिह्वायाम निहितश्च, ले जी मुख में डाल लिया आपने तो उसको, तो फट खा ही लिया, जिह्वायाम निहितश्च सिद्ध गुटिकाम, या तो फिर आपको ऐसा लगा होगा कि ठंडी में रहते रहते आपको थोड़ा ठंडी हो गई होगी, तो किसी वैद्य ने सिद्ध गुटिका कोई बढ़िया दवाई बनाकर रखा हो, आपने समझ लिया कि ये औषधि है ठंडी का, समझे कि नहीं, ये ठंडी का औषधि है, इसको मैं खाऊंगा तो मुझे ठंडी असर नहीं करेगी, ऐसा समझकर आपने क्या किया, सिद्ध गुटिका मुख में डाल ली है। अब देख लो लोग कैसे कैसे भ्रांति है कि हिमालय की यात्रा करते हैं जहां बहुत ठंडी लगती है, तो हम तीन बार कैलाश मानसरोवर जाके आ चुके हैं, तो एक व्यक्ति ने झोले में ब्रांडी रख ली थी उसने, हमने कहा ये क्या रखा है तुमने, बोले महाराज जब वहां ठंडी लगेगी तो ये काम लग जाएगा, ये औषधि है ठंडी के लिए, ये थोड़ा सा खाएंगे पिएंगे तो बस ठंडी गायब, और बहुत ठंडी लगी तो ये पांव के तलुए में उसका मालिश करोगे तो ठंडी उतर जाती है। ले जी ब्रांडी जो है जहर है विष है, मनुष्यों को भी भ्रांति होती है कि ये औषधि है, तो शिव जी को भी भ्रांति हो गई, किसकी, जहर में ठंडी हटाने की भ्रांति हो गई, तो ये तो औषधि है बढ़िया, इसको थोड़ा सा खाऊंगा तो बस ठंडी मुझे असर नहीं करेगी, इसलिए अपने खा लिया, और खाकर खत्म कर दिया होता फिर दोबारे और फिर खोजना पड़ता उसको। उन्होंने कंठ में रख लिया है ना। हमने सुना है कि वैज्ञानिक लोग शुगर के लिए, मधुमेह के लिए ऐसा कैप्सूल बनाने जा रहे हैं कि एक बार चिराग लगा के शरीर में वो कैप्सूल को रख दो तो 10 वर्ष तक इंसुलिन लेना नहीं पड़ता। हाँ, शरीर में रख दिया तो वो अपने आप बॉडी जो है रक्त से उसके इंसुलिन लेता रहेगा, बॉडी जितना चाहिए। वो कैप्सूल छोटी सी कैप्सूल है, यहां चीरा लगा दिया, यही रख दिया, बस हो गया। फिर खूब हलवा खाओ, पूरी खाओ, सीरा खाओ, सिर न खाओ सिरा खाओ, सिर न खाओ, क्योंकि इंसुलिन है। फिर कोई डर नहीं, ऐसा दवाई बना रहे हैं कहते हैं। सुनने में आया, मैंने पेपर में भी पढ़ा था। तो एक औषधि कई वर्षों तक, लंबा पीरियड तक काम कर गया कि नहीं यहां रखने से? भगवान शिव ने तो इतना अच्छा रखा, यहां रख दिया है, है? अब इसीलिए वह सृष्टि के आदि से आज तक दिगंबर होकर हिमालय में रह रहे हैं और आज तक उनको ठंडी लगी ही नहीं है। अच्छिम छी करते ना जब सर्दी लगती है तो, उनको कुह शिवजी कभी नहीं करते ना? वो तो वहीं नहाते हैं, खूब खेलते हैं उस बर्फ में, वहीं क्रीड़ा करते हैं। उल्टा गंगा जी रखा है तो भी असर नहीं करते। हम तो एक दिन डुबकी लगाए गंगा जी में, दूसरे दिन से एक नया रूमाल रखना पड़ता है नाक पोंछने के लिए। उनको गंगा सिर में रखें कभी सर्दी नहीं लगता, क्यों? बोले उन्होंने उसको घुटी काम, सिद्ध घुटी काम, उस जहर को औषधि के रूप में कंठ में रख ली है। आज तक उनको फिर कोई रोग नहीं, कोई विकार नहीं, कोई असर नहीं करता ठंडी। जबकि उसको देखकर सब देवता लोग भयभीत होकर भाग गए। ज्वालोग्रस्त कला मराति भयदः छेल कथम वा त्वया दृष्ट किं च करे धृत करतले किं पक्व जम्बू फलम जिह्वायां निहितश्च सिद्ध घुटिका वा कंठ देशे भृतः। भृत मन धारण किया, किं ते नीलमणि, क्या आपने उसको कंठ में शायद इसलिए रखा हो कि एक रत्न है, सभी लोग गले में रत्न धारण करते हैं तो मैं भी नीलमणि समझकर अपने गले में माला बनाकर वो मनुष्यों के सफेद हड्डियों के माला के बीच में एक काला। हमने देखा माताएं छोटे छोटे बच्चे को नलाती हैं, धुलाती हैं, क्रीम पाउडर क्या क्या लगाती हैं और बढ़िया कपड़ा लगाकर सुंदर गोरा चिट्टा बनाती हैं। उसके बाद एक छोटा सा काजल का टिक्का यहां लगा देते हैं, किस लिए? बोले किसी को नजर न लगे। हैं? भगवान शिव क्या शरीर पूरा गोरा है, माला भी ऐसे ही है, सब कुछ, कहीं किसी का नजर न लगे इसलिए कंठ में काला धारण कर लिया। कभी शिव जी को कोई नजर ही नहीं लगाता है, है? तो उनको कोई रोग शोक कुछ नहीं होगा। है? क्या सुंदर शोभा दे रहा है। विभूषणमयं संभोत महात्मन वदः नालंबा सकृदेव देव भवता सेवा नतिर्वानुति पूजा वा स्मरणम कथा श्रवणम श्रवणम प्यालोकनम मादृशाम स्वामिन्नस्तिर देवतानुसरणा यासे न किम लभ्यते कावा मुक्तिरितः कुतो भवति चेत् किम प्रार्थनीयम् तदा। नालंबा सकृदेव देव भवतः, हे देवादि देवा, ये संबोधन है, देवा महादेव नालम सकृदेव भवतः सेवा। कोई जीव यदि श्रद्धापूर्वक भक्तिपूर्वक विश्वासपूर्वक एक बार आपकी सेवा कर लेता है ठीक से, तो क्या वही सेवा ही उसके मोक्ष के लिए पर्याप्त नहीं है क्या? हाँ? उसके कल्याण के लिए पर्याप्त नहीं है क्या? उसके लिए वही पर्याप्त है। यहां आक्षेप पूर्वक भगवान शिव की स्तुति कर रहे हैं। कोई जीव आत्मा श्रद्धा विश्वास पूर्वक आपकी एक बार भी सेवा करता है तो वो सेवा उस आपके लिए, उसके द्वारा आपके प्रति की गई वो जो सेवा है, वो सेवा उसके कल्याण के लिए मोक्ष के लिए पर्याप्त नहीं है क्या? न अलम, पर्याप्त नहीं है क्या? सकृदेव माने एक बार, भवत सेवा, किसी मनुष्य ने एक बार भी परमात्मा की सेवा की तो उसके कल्याण के लिए वो पर्याप्त हो जाता है। स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतोभयात्। हाँ, भगवान की जो सेवा है, भक्ति है, विश्वास है, थोड़ा भी उसके सेवा भी उसके कल्याण के लिए पर्याप्त है। नतीरवा, और सेवा न करके उसने केवल आपके चरण में एक बार सिर झुका ली, नति माने नमस्कार की, अवनति। पुष्पदंताचार्य जी ने तो यहां तक कहा है कि आपके चरण में जिसके मस्तक की अवनति है, किसने एक बार आपके चरण में मस्तक को झुका लिया, अवनति माने झुका लिया, वो मस्तक की अवनति उसके जीवन में किस चीज की कमी होगी? सर्वोन्नति, सब कुछ से वो उन्नत हो जाएगा। उदाहरण दिया बाणासुर की, बाणासुर ने एक बार आपके चरण में सिर झुकाया था, अवनति की थी, वो हर दृष्टि से वो उन्नत हो गया, लक्ष्मी अर्थ के दृष्टि से भी उन्नत हो गया, शरीर के बलों से, बल के दृष्टि से भी उन्नत हो गया, शरीर के दृष्टि से भी उन्नत, सर्वोन्नति हो गई उसकी। लेकिन सर्वोन्नति के लिए जीवात्मा को चाहिए कि अपने सर्वदृष्ट समग्र उन्नति चाहता है तो एक बार अपने मस्तक की अवनति भगवान शिव के चरण में कर लेवे, झुका लेवे बस। नतीर माने नमस्कार करना, नुति ही आपकी स्तुति, जीवात्मा के एक बार आपके स्तुति कोई गान करता है, प्रशंसा करता है, प्रार्थना करता है तो वह जीवात्मा के लिए कल्याण के लिए नहीं होगा क्या? अर्थात अवश्य में वो होगा। पूजा वा विकल्प है, कई विकल्प हैं कल्याण करने के लिए, सेवा करो, बाणासुर ने पूजा की, प्रतिदिन 125,000 पार्थिवेश्वर शिवलिंग का निर्माण किया और नर्मदा में विसर्जन की, है? उसके लिए कहा कि मुझे मेरे दो हाथ कम हो गए महाराज, ज्यादा हाथ दे दो। भगवान ने कहा कि तुझे सेवा ही करनी इच्छा है तो ले 1,000 हाथ। सहस्र बाहु होकर 1,000 हाथ से वह शिवलिंग निर्माण करता था, विसर्जन करता था, दूसरे दिन फिर पार्थिवेश्वर बनाता था, षोडशोपचार पूजा करता था, फिर विसर्जन करता था, तीसरे दिन भगवान प्रसन्न हो गए, उसकी पूजा से भगवान प्रसन्न हो गए। देख लो, और क्या न दिया बाणासुर को, यद्रिद्रिम सूत्रामो भरत परमोच्चैरपि सति अधश्चक्रे। बाणासुर ने इंद्र का, स्वर्ग का सर्वोच्च साम्राज्य को भी बाणासुर ने अधचक्र तुच्छ बना दिया। बाणासुर के साम्राज्य के सामने स्वर्ग का साम्राज्य कुछ भी नहीं, क्योंकि स्वर्ग का, इंद्र का साम्राज्य तो केवल एक लोक का साम्राज्य था, बाणासुर के साम्राज्य तो तीनों लोक के साम्राज्य हो, तो स्वर्ग का साम्राज्य तुच्छ हो गया कि नहीं बोलो? तीन तीन साम्राज्य बाणासुर के हैं, इंद्र का तो एक ही साम्राज्य है, तो क्षुद्र तुच्छ हो गया। किसके चलते बोले? आपकी चरणों में उसने मस्तक झुकाई, आपकी सेवा की, सपरिया की, पूजा वा स्मरणम, सेवा नहीं कर सकते हो, नमस्कार नहीं कर सकते हो, स्तुति गान पढ़े लिखे नहीं हो इसलिए स्तुति गान नहीं कर सकते हो, वृद्ध हो गए हो अब पूजा भी सेवा भी नहीं कर सकते हो, तो अले स्मरण तो कर सकते हो, स्मरण कर सकते हो कि नहीं? कोई एक बार भी शिव का स्मरण कर लेता है तो क्या उसके कल्याण के लिए वो स्मरण पर्याप्त नहीं है क्या? पुष्पदंताचार्य जी ने महोक्षक श्मशाने स्वा क्रीड़ा स्मरहर पिशाचा सहचरा चिता भस्मा लेप स्रगपि निर्करोटी परिकरा अमंगल्यम शीलम। हे शिव, आपका शील स्वभाव यदि देखा जाए न लौकिक दृष्टि से मंगलमय है न शास्त्रीय दृष्टि से मंगलमय है, शास्त्रीय दृष्टि से भी अमंगलमय है, लौकिक दृष्टि से भी असुचि है, अपवित्र है, अमंगलमय है। शमशान में बैठना वो लौकिक दृष्टि से अच्छा है कि शास्त्रीय दृष्टि से अच्छा है? भाई अमंगल ही है। स्मरहर, अब सारा प्राणी के प्रवृत्ति में कारण है स्मर है, कामना ही प्राणियों का कल्याण का हेतु है, लोक व्यवहार में तो यही कहते हैं ना, यह अच्छा माना जाता है, कामना ही विकास का हेतु है, इच्छा ही आविष्कार, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी, ये सूत्र बोलते हैं ना, आवश्यकता माने कामना, ये तो अच्छा माना जाता है। बेटा यदि कहे मां मेरे को शादी करने की इच्छा हुई, मां बाप खुश हो जाएंगे। बेटी यदि कहे कि मां मुझे शादी करने की इच्छा हो गई अब मेरी शादी कर दो, मां बड़े खुश हो जाएंगे। लोक व्यवहार में कामनाओं को अच्छा माना है कि नहीं? मां यदि बेटा कहे, बच्चे कहे मां मुझे भोजन दो, भूख लगी है, खाने की इच्छा हुई, बड़े खुश हो जाएंगे, वाह बच्चों को खिलाना, तो कामना व्यवहार में भी अच्छा माना जाता है। और शास्त्रीय कर्म भी कामना के बिना होगा नहीं, इसलिए शास्त्र भी सर्वम कामस्य चेष्टितम प्रशंसा करता है। लेकिन भगवान शिव ने स्मरहरा कामना को ही मार दिया। कामना जो मर गया वह शास्त्रीय दृष्टि से अच्छा है कि लौकिक दृष्टि से अच्छा है? बोलो, शास्त्रीय दृष्टि से भी कामना खत्म हो गई तो कौन यज्ञ करेगा? स्वर्ग कामो यजेता, स्वर्ग की कामना वाला ही तो यज्ञ करेगा, स्वर्ग की कामना ही मर गया तो यज्ञ कहां से करेगा? और लौकिक भोग विषय को भोगने की कामना खत्म, न समाज में उसको अच्छा मानेंगे, तो अमंगल है वो। कामना न होना सामाजिक दृष्टि से अशुभ है। और स्मरहर कामदेव को कामना को मार दिया उन्होंने, तो अमंगल है लौकिक दृष्टि से। पिशाचा सहचरा, भूत प्रेतों को साथ में लेकर चलना लौकिक दृष्टि से अच्छा है कि शास्त्र दृष्टि से अच्छा है? बोलो। चिता भस्मा लेप, ले जी मशान की विभूति शरीर में लपेट लेना न शास्त्र दृष्टि से अच्छा है न लौकिक दृष्टि से। शास्त्र अशुद्ध मानता है, लोक में भी कोई चाहता नहीं है कि चिता का भस्म लिपट कर ले है? पता नहीं ये पाउडर बनाने वाले किसका बनाते हैं, वो फिर भी ठीक है, है? और चिता का भस्म ठीक नहीं है, है? अभी एक बहस चल रहा है प्रेमपुरी आश्रम में दो तीन दिन से, साबुदाना की खिचड़ी खाते हैं ना एकादशी में, खीर खिचड़ी, उसमें हड्डी का पाउडर पड़ता है। बोलो, अब उस हड्डी का पाउडर फलाहार में चलेगा साबुदाना के नाम पर है? और इसी तरह हड्डी का पाउडर बना के डब्बे में लगा दिया, नाइसिन लिख दिया तो खूब छिड़कोगे शरीर में, और अरे चिता का भस्म लपेट लो ना, जब हड्डी का ही पाउडर छिड़कना है तो वहां भी हड्डी जली हुई है, पवित्र है लेकिन लोक व्यवहार में उसको शुद्ध नहीं मानते, अमंगल है। तब भवतु नाम एव अमंगलम, स्रग अपि निर्करवटी, मनुष्यों के खोपड़ी की माला लगाना, फिर भी ये सब अमंगलमय अशुभ अपवित्र होने पर भी कोई श्रद्धा से आपको इसी रूप में स्मरण करता है तो उसका परम मंगल होता है। तथापि स्मर्तृणाम अमंगल्यम शीलम तब भवतु नाम एवं अखिलम, तथापि फिर भी इसी रूप में शिव शमशान में बैठते हैं शिव जी, भूत प्रेत को साथ में लेकर चलते हैं शिव जी, हैं चिता का भस्म लपेट कर लेते हैं शिव जी, मनुष्यों की खोपड़ियों के माला लाइन पहनते हैं शिव जी, इतनी रूप में ही शिव जी को स्मरण करता है तो स्मरणकर्ता को परम मंगल होता है, कल्याण हो जाता है। तो स्मरण से भी कल्याण होता है जीव का। तो सकृत स्मरण, ये सकृत का सब जगह अन्वय करना, सकृत पूजा, सकृत सेवा, सकृत नुति, सकृत नुति, सकृत पूजा, सकृत स्मरण और सकृत आपकी महिमा का एक बार भी श्रद्धा पूर्वक भाव पूर्वक ऐसी कथा श्रवण कर लेता है तो क्या उसके कल्याण के लिए वो श्रवण पर्याप्त नहीं होगा? पर्याप्त है। प्यालोकनम, और एक बार आपके श्री विग्रहों का, प्रतीकों का श्रद्धा से दर्शन भी कर लेता है तो उसका कल्याण होगा। तो माद्रिशाम, मेरे जैसे तो कल्याण के लिए, मेरे जैसों को कल्याण करने, कल्याण के लिए यही पर्याप्त है। स्वामी न स्थिर देवता अनुसरणा या से न किम लभ्यते, और अपने कल्याण करने के लिए इतना सरल उपाय होता हुआ भी संसार के अज्ञानी मूर्ख लोग क्या करते हैं? हे स्वामीन, अस्थिर देवता अनुसरणायासेन, इंद्र आदि अस्थिर देवता है, चंचल हैं देवता, भोगासक्त हैं देवता, अस्थिर हैं, भोगने के लिए स्वर्ग में रहते हुए भी मर्त्यलोक में आ जाते हैं और वो स्थिर नहीं है देवता, तो उनके भी अपने प्रारब्ध होता है क्योंकि उन देवताओं का भी पूर्व जन्म में मनुष्य जब रहते थे उस समय किया हुआ जो कर्म है वो कर्म के फल भोगने के लिए देवता आदि भाव की प्राप्ति हुई, वो कर्म समाप्त हो गया तो उनके देवत्व समाप्त, इसलिए देवपना अस्थिर है, अनित्य है। लेकिन आपकी शिवपना देवताओं के जैसी नहीं है और ये होता हुआ भी ये संसारी लोग अस्थिर देवताओं का अनुसरण क्यों करते हैं, यानी पीछे पीछे क्यों दौड़ते हैं? कभी इंद्र की पूजा करते हैं, कभी कुबेर की, लक्ष्मी के लिए कुबेर की पूजा करते हैं। अरे भाई, आपकी पूजा क्यों नहीं करते हैं मूर्ख लोग? अस्थिर देवता अनुसरणम किम लभ्यते, क्या पाएंगे वो लोग जो देवता खुद ही अस्थिर हैं, अनित्य हैं, उनका अनुसरण यानी उनकी सेवा शुश्रूषा करके उनको मिलेगा क्या? कावा मुक्तिरिता कुतो भवति चेत, फिर उन लोगों को मुक्ति होगी कैसे? नहीं होगी। मुक्ति का इतना सरल उपाय होता हुआ, एक बार आपकी पूजा कर लो, एक बार आपकी कथा श्रवण कर लो, एक बार आपको स्मरण कर लो, एक बार आपको प्रणाम कर लो, एक बार आपकी स्तुति गान कर लो, एक बार आपके श्री विग्रह का दर्शन कर लो, इतनी से मुक्ति हो सकती है। तो फिर देवताओं के पीछे पड़ने की क्या जरूरत? क्या देवताओं के पीछे पड़कर उनकी पूजा, उनके स्मरण, उनकी सेवा करके कोई मुक्ति लाभ प्राप्त कर सकता है? कभी भी नहीं। कावा मुक्तिरित कुतो भवति चेत किम प्रार्थनीयम तदा, फिर ये अज्ञानी लोग देवताओं की प्रार्थना करते हुए क्यों घूमते हैं मुझे समझ में नहीं आता। आपने इतना सरल उपाय बता दिया, होते हुए भी इसका आत्मसरण क्यों नहीं करते जीव? और क्या कहेंगे, कल देखेंगे। ஓம் பூர்ணமதாஹ பூர்ணமிதம் பூர்ணாத் பூர்ணமுதச்சதே பூர்ணஸ்ய பூர்ணமாதாய பூர்ணமேவாவசிஷ்யதே. ஓம் சாந்தி சாந்தி சாந்தி. சங்கரம் சங்கராச்சாரியம் கேசவம் பாதராயணம் சூத்ரபாஷ்யக்ருதௌ வந்தே பகவந்தௌ புனஃ புனஃ. ஈஸ்வரோ குருராத்மேதி மூர்த்திபேதாபிபாகினே வ்யோமவத் வ்யாப்த தேஹாய தக்ஷிணாமூர்த்தயே நமஃ. ஓம் சாந்தி சாந்தி சாந்தி. ஓம்.